آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। कल रात आने वाले बजट को लेकर अटकलें हुई तेज। सरकारी नीतियों के विरोध में आज और कल रहेगा भारत बंद। और चेल्सी ने दी लेस्टर सिटी को 9-0 से मात। सैम केर ने दागे 2 गोल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं ने एक नई परंपरा की स्थापना की है और कल आने वाली $17.9 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को जनता तक पहुंचाने में महिलाएं एक अहम भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये योजनाएं 40,000 नौकरियां पैदा करेंगी। इससे ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर 4% से भी नीचे चली जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में महिलाएं मुख्य भूमिका में रहेंगी। सरकार के चुनाव से पहले के बजट में सभी प्रदेशों के लिए दर्जनों योजनाएं घोषित की गई हैं, जिसमें क्वींसलैंड को सबसे अधिक यानी $3.9 बिलियन की राशि का वादा किया गया है। श्री मॉरिसन का कहना है कि सरकार परिवारों और छोटे उद्योगों पर बढ़ रहे दबाव को समझती है।
What we recognise is the great pressure that Australian families and small businesses are under right around the country, and we've designed a suite of measures to address those cost of living issues.
प्रधानमंत्री ने एशिया पैसिफिक में बढ़ रहे तनाव के बारे में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने पड़ोसी देशों के इस खतरे को लंबे समय से जानता है, जिसमें चीन का बढ़ रहा प्रभुत्व भी एक चिंता का विषय है। श्री मॉरिसन जल्द ही फिजी और पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। यह तब आता है जब ऑस्ट्रेलिया को सोलोमन द्वीप और चीन के बीच होने वाले एक सुरक्षा करार की जानकारी मिली है। सोलोमन आइलैंड्स के नेता प्रतिपक्ष मैथ्यू वेल ने द ऑस्ट्रेलियन को बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को पिछले साल चेताया था कि ऐसी चर्चाएं जारी हैं और किसी एक करार से भी देश में चीनी बेस के निर्माण की बात पक्की हो सकती है। पर श्री मॉरिसन का कहना है कि इलाके में चीन का खतरा कोई हैरानी की बात नहीं है।
This is an issue of concern for the region, but it has not come as a surprise. We have been long aware of these pressures. That's why we had the Pacific step up. That's why we doubled our effort.
फेडरल नेता प्रतिपक्ष एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि फेडरल सरकार ऐन मौके पर खर्चा कर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। कोषाध्यक्ष जॉश राइडनबर्ग ने कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं, जो माना जा रहा है कि मंगलवार रात बजट के केंद्र में रह सकते हैं। श्री राइडनबर्ग कल गठबंधन की ओर से अपना 4th बजट पेश करेंगे। श्री अल्बनीजी का कहना है कि मॉरिसन सरकार बिना किसी आर्थिक योजना के मुद्दों पर पैसा खर्च कर रही है।
After almost a decade in office, they want to convince people that they're now concerned about standard of living. They're now concerned that people are going backwards, that they can't afford the costs of petrol, the rising costs of food, the rising costs of housing. And in some ways, they're adopting some of our plans, and I welcome the fact that they've adopted our plan, which we announced last week, on regional housing.
लेबर कोषाध्यक्ष जिम चामस श्री अल्बनीजी के साथ मीडिया से बात करते हुए बोले कि बजट से भविष्य की तैयारी होनी चाहिए, चुनाव की नहीं।
And now on the eve of an election, the government wants to pretend that all of a sudden they've discovered cost of living pressures for Australian working families. If they cared about cost of living pressures, they wouldn't have spent the best part of a decade going after wages and job security and Medicare. And if they hadn't rorted tens of billions of dollars in the budget, there'd be much more room to provide responsible cost of living relief for Australian families.
दिवंगत सेनेटर किम्बरली किचिंग को अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाली और इरादों की पक्की महिला के रूप में याद किया गया। सभी राजनीतिक खेमों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह एक विशेष सिटिंग में विक्टोरिया की इस लेबर नेता को याद करते हुए शोक पत्र पास किया गया। इस माह की शुरुआत में कथित रूप से हृदय गति रुकने के कारण हुई सुश्री किचिंग की मृत्यु के बाद पिछले हफ्ते उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सेनेट में लेबर नेता पेनी वॉन्ग का कहना रहा कि किचिंग एक देशभक्त महिला थी जो हर कीमत पर अपने देश को बचाना चाहती थी। सेनेटर वॉन्ग ने लेबर में चल रही आंतरिक कलह का भी संज्ञान लिया, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि सुश्री किचिंग की मृत्यु के पहले उन्हें पार्टी द्वारा धमकाया गया था और अलग थलग कर दिया गया था।
Much has been said and written in the days since Senator Kitching's passing. Many are hurting and many are grieving. I understand that grief and loss can be so profound that it can provoke anger and blame. I've made my views very clear outside this place about some of that misplaced anger and blame. I will not return anger with anger or blame with blame. As my friend Senator Malandiri McCarthy said, sorry business is very sacred. And Senator Kimberley Kitching deserves her life and legacy to be celebrated and remembered.
विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री एंड्रूज अगले 7 दिन तक संगरोध में रहेंगे। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि खराब गले और हल्के बुखार जैसे लक्षण महसूस होने के बाद जब उन्होंने रैपिड एंटीजन जांच की तो वे संक्रमित आए। श्री एंड्रूज ने आगे कहा कि हालांकि उनकी पत्नी और बच्चे जांच में नेगेटिव आए हैं, लेकिन वे भी अगले 7 दिन तक संगरोध करेंगे। डिप्टी प्रीमियर जेम्स मर्लिनो सोमवार 4 अप्रैल तक कार्यकारी प्रीमियर रहेंगे। दक्षिणी क्वींसलैंड में बाढ़ के पानी में एक गाड़ी के बहने से एक व्यक्ति और कई कुत्तों की मृत्यु हो गई है। दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड के कई हिस्से भीषण मौसम और आकस्मिक बाढ़ के लिए अलर्ट पर हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति और इनके साथ के जानवर एक यूट में एक महिला के साथ थे जब वे गाड़ी टुवुम्बा के उत्तर पूर्व में स्थित किंग्सथॉर्प में बाढ़ के पानी में बह गई। क्वींसलैंड अग्नि एवं आपात सेवा की त्वरित कार्यवाही से महिला की जान तो बचा ली गई, लेकिन पुरुष और जानवर नहीं बचाए जा सके। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वे रूस की सुरक्षा गारंटी मानने को तैयार हैं, जिसमें यूक्रेन के लिए न्यूक्लियर फ्री स्टेटस भी शामिल है। श्री ज़ेलेंस्की का कहना है कि वे चाहते हैं कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी अश्योरेंस से मिलता जुलता एक अनुबंध तैयार किया जाए, जिससे करार में और सिक्योरिटी यानी गारंटी मिल सके। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति का कहना है कि किसी भी करार को तय करने के लिए उन्हें रूसी राष्ट्रपति से मिलना होगा।
We must come to an agreement with the president of the Russian Federation. And in order to reach an agreement, he needs to get out there on his own 2 feet and come meet with me. As I said, in any place in the world, expect pointless meetings in Belarus, Russia, or Ukraine. And the meetings of our delegations emphasize that they are pointless. They are more political, pointless. These are 3 conflicting sides, Ukraine, Russia, and Belarus today. So we met and we agreed. Our agreement is enough. With signatures, with stamps, even with blood, it is enough to start the process of withdrawing forces.
Aur ab khabrein Bharat se. भारत में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज और कल भारत बंद की घोषणा की है। भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में किया गया है, जिनका असर कर्मचारी, किसान और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन देने की घोषणा भी की है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई को बताया कि इस हड़ताल में करीब 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो सकती है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के प्राइवेटाइजेशन की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन हड़ताल में शिरकत कर रहे हैं। डाक, आयकर, तांबा और बीमा जैसे कई अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के हड़ताल में भाग लेने की संभावना बताई गई है। साथ ही रेलवे और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी यूनियन भी बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर सकती हैं, जबकि रोडवेज, परिवहन और बिजली विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। विद्युत मंत्रालय ने आज सभी सरकारी कंपनियों और अन्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। मंत्रालय की सलाह में कहा गया है कि अस्पतालों, रक्षा और रेलवे जैसी आवश्यक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हर समय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। वहीं भारत में कोरोना की परिस्थिति में हर दिन सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 10.6% की कमी के साथ 1,270 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले कोरोना के 1,500 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में इस वायरस से भारत में कुल 31 लोगों की मृत्यु हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,567 लोग कोरोना वायरस को मात देकर आगे बढ़े हैं और रिकवरी रेट फिलहाल 98.75% की है। देश में टीकाकरण का कार्य भी तेजी से जारी है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.36 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 75 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। मटिल्डास की कप्तान सैम कर ने लेस्टर सिटी के खिलाफ चेल्सी की 9-0 की विजय में चेल्सी की ओर से 2 गोल दागे। इसी के साथ अब वे विमेंस फुटबॉल लीग के शीर्ष पर पहुंच गई हैं। चेल्सी ने केवल 10 मिनट में ही 4-0 का स्कोर बना लिया था, जिससे किंग पार स्टेडियम में बैठे दर्शक अचंभित रह गए थे। कैर के साथ ग्यूरो रेटिन और बेथ इंग्लैंड ने भी 2-2 गोल दागे। लीग में 5 मैच बचे हैं और चेल्सी आर्सेनल से 1 पॉइंट आगे है। चेल्सी और आर्सेनल अगले माह सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और अब अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल हल्की बरसात हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप छांव का मौसम रह सकता है। यहाँ अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल बारिश की शंका है। अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश की आशंका बताई गई है। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश या तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।